परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदना करते हुए इस पावन परंपरा को प्रणाम करते हुए जहां संत नाम से प्रारंभ होता है और वह राम तक आने वाली परंपरा संत राम की और इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम, जहां तुलसी का स्मरण करते हैं वहां पर दोनों तुलसी का स्मरण हो जाता है। एक तो तुलसी जो वृंदा के रूप में है, जिसे हम भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, और दूसरे तुलसी दास जी हो गए, वह भी भगवान को अर्पित हो गए। ये दो तुलसी है। तो आज जो तुलसी है वह तुलसी वन के रूप में है, वृंदा के रूप में है, और एक तुलसी मनुष्य रूप में है जो राम को अर्पित है, सर्वस्व अर्पित है। इधर भी वासना नहीं है, उधर भी वासना नहीं है। इधर पत्नी के प्रति जो प्रेम था उसको तिलांजलि दे करके राम के प्रति प्रेम हो गया, और उधर पति के प्रति असीम प्रेम था जो सामान्य नहीं था, जालंधर था। और वहां पातिव्रत्य था, जिस पातिव्रत्य के फलस्वरूप जालंधर मारा नहीं जा रहा था, उसको साक्षात भगवान विष्णु को भंग करना पड़ा। शाप मिला भगवान को, आप जो है पत्थर बन जाओ, तो पत्थर हुए निष्ठुर, तो शालिग्राम शिला बन गए, और गंडकी नदी में कीटों के द्वारा काटे जाने से अंदर चक्र हो जाते। तो जहां जिस नदी के पावन जल का पत्थर भी कीड़ों से काटा गया हो अंदर, उसके बाद भी पूजनीय है वह शिला विशेष, शालग्राम शिला, जिसके अंदर चक्र रूप में हरि विराजमान है। और वह अंदर विराजमान जो हरि चक्र रूप में है, वह हमारे जीवन चक्र को गतिमान करते हैं। हम हमेशा ध्यान करते हैं, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तु भस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। तो सशंख चक्रम में शंख और चक्र दोनों ही उनके आयुध। शंख का तो जब शंख बजाते हैं महाभारत शुरू होता है, शंख बजाते हैं तो दरिद्रता दूर होती है, और शंख खाली है। शम का अर्थ है कल्याणकारक, और ख का अर्थ है आकाश। जो खाली होते हुए भी सबका कल्याण करे वह शंख है। और चक्र, जो चक्र शालग्राम शिला के अंदर विद्यमान है, वह चक्र यदि व्यक्ति असंयमित है, क्रोधी है, तो दुर्वासा जैसे को अपने चक्र से ही परास्त किया और उसके दुर्गुणों का दर्शन कराया, इसलिए वो सुदर्शन बन गया। हमें हमारे अच्छाइयों का दर्शन कराने वाला जो जीवन चक्र है वह सुदर्शन चक्र है, और उसका जो दर्पण है वह श्री हरि का चरित्र है। उसमें यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे रहना चाहिए, मनुष्य जीवन वास्तव में है क्या। संपूर्ण जीवन में यदि पाप और पुण्य का ही झमेला है, तो पाप और पुण्य कब चढ़ जाते हैं कब उतरते हैं, ये हमारे जैसे प्राणी को पता तो नहीं चलता है। लेकिन इन शास्त्रों की जो पंक्तियां हैं वह बतलाती है कि पूरी पुण्य कार्य में भी पाप चढ़ जाते हैं। देवता ब्राह्मण और अतिथि का अनादर हो गया तो आया हुआ अतिथि से भी हमें पाप की प्राप्ति हो जाती है, जहां हमें पुण्य लेना चाहिए। तो इसलिए अतिथि की सेवा विशेष में बड़ी सावधानी की बात कही गई है कि यदि अतिथि आता है और बिना कुछ लिए जाता है, यदि हम उसके लिए सद्वाक्य नहीं बोलते हैं तो वह हमको अपना पाप दे करके जाता है। क्योंकि कहा कि जो सत्पुरुष होते हैं उनके यहां चार वस्तुओं की कमी नहीं होती है, चार चीजों की। कहा उसमें प्रथम है त्रिणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानि च शताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। त्रिणानि मतलब आसन, यदि आपके पास आसन नहीं है तो भूमि को ही झाड़ दिया, आइए भगवान बैठिए। तृण का आसन दे, नहीं सही तो भूमि ही, ये जगह है आइए, ये अपना जगह है, यहां बैठते हैं। उदकम जल पीजिए, कुछ नहीं तो सादा जल पी लीजिए। वाक चतुर्थी आदर, और सुंदरता मतलब मधुर वाणी। ये चार यदि आपके पास है तो आपके अतिथि तृप्त हो जाएंगे, और यदि ये नहीं है तो अतिथिर्यस्य भगनाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते तत्सर्वं पुण्यमादाय दुष्कृतं वाप्य गच्छति। तो वह आपका पुण्य लेकर के चला जाता है और आपको जितना अपना दुष्कर्म है, दुष्कृत्य है, वो आपको प्रदान करके जाता है। इसलिए अतिथि के ही सत्कार में देख ले पुण्य और पाप, कब पुण्य चढ़ा कब पाप चढ़ा, इसको सामान्य मनुष्य कम जानता है। यह परंपरा के द्वारा, शास्त्रों के पंक्तियों के द्वारा यह ज्ञान होते हैं। ये सब भगवान ब्रह्मा जी ने लोक के हित के लिए साक्षात जिस गंडकी नदी की उत्पत्ति किया, जो ब्रह्मा के गंडस्थली से चली, गाल के पसीनों से जो नदी बनी, उस नदी का नाम गंडकी पड़ा। और उस गंडकी नदी का जो शिला है, वह शिला विष्णु शिला सालक ग्राम शिला है, और उसका पा वो शिला जिस घर में रहता है उस घर में पाप ताप संताप नष्ट होते हैं, लेकिन उनके विधि पूर्वक पूजन की बात बतलाई गई है। कल मैंने चर्चा जरूर किया था, लेकिन चर्चा में थोड़ी सी जल्दबाजी थी, इसलिए हम समझ रहे हैं कि वो पूर्णतया मस्तिष्क में बात बैठी नहीं होगी। तो कहा जो शालिग्राम शिला है उसके पूजन में दंभ नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, इस तरह से अहंकार अंदर नहीं आना चाहिए। कबीर दास जी ने तो इतना कह दिया कि यदि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तब यह विचारणीय विषय है कि ब्राह्मण लोग शिला की पत्थर की पूजा करते हैं, और कबीर दास ऐसा कह रहे हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलने होता तो मैं पहाड़ को पूजूं। तो ये कबीर की जो उल्टवासी है, उल्टी बोली, कबीर दास की उल्टी वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी, तो उसके द्वारा वो कुछ व्यंग करना चाहते हैं कि पहाड़ में हरि नहीं है, भावनाओं में हरि बसा हुआ है। नहीं तो हम पत्थर पूज रहे हैं और हमको बहुत अभिमान है कि हम ब्राह्मण हैं, हमको अहंकार है, तो अहंकार से प्रभु दूर जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मीट गया जब दीपक देखा माए। पहले मैं था, मेरा अहंकार था, तो उस समय मेरे अंदर प्रभु नहीं थे, और अब प्रभु है हम नाही, और अब मेरे अंदर जब प्रभु आ गए तो मेरा अहंकार जो मेरा दंभ था वो अब नहीं रहा। क्यों? तो दंभ वहां होता है जहां अंधकार होता है, मतलब अज्ञान होता है। अज्ञान होने से व्यक्ति अहंकारी बन जाता है और अहंकारी होकर के सबका तिरस्कार करने लगता है। इसलिए दंभ पूर्वक नहीं, दंभ को अपने अंदर से निकाल करके तब भगवान का पूजन करना चाहिए। दंभ पूर्वक नहीं, अहंकार आया पूजन में कि नहीं हम बहुत अच्छा पूजन करते हैं, हमारे जैसा कोई पुजारी नहीं है, तो वो अहंकार गर्त में ले जाता है, अभिमान की तरफ ले जाता है और उस अभिमान से व्यक्ति का नाश होता है। इसलिए भगवान के पूजन में अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर यदि हम पराई स्त्री के तरफ देखते हैं और पर धन का अपहरण करते हैं और शालक ग्राम शिला पूजते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बातें सीधी डायरेक्टली कोई कथाकार नहीं कहता है। कारण क्या? दूसरे तरह से कहता है, लेकिन स्पष्ट भाषा में ये सब बातें कही जानी चाहिए, हितावह है। और जिसके घर में दंभ नहीं है, दूसरे का धन का हरण नहीं करता है और स्त्री के द्वारा जीता नहीं गया है, तो यदि वह शालक ग्राम पूजा निष्प्रिय होकर के भक्तिभाव से करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं और अहंकारी के लिए तो नहीं। क्योंकि कहा कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी ले सकर चली हाथी के सिर धूर। जब हम लघु बन जाते हैं, सत्वगुण विशेष से रहते हैं, तो हमारी लघुता हमें प्रभुता को प्रदान करती है। और यदि हम प्रभु बनने की चेष्टा करते हैं, सबसे अपने को आगे ले जाने की बात करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, तो वही हमारा जो अहंकार है वह हमें कुछ प्राप्त कराने से बचाता है, हमें कुछ प्राप्त करने नहीं देता है। जैसे दृष्टांत दिया कि एक हाथी है और एक चींटी है, चींटी छोटी जंतु है, वह शक्कर का टुकड़ा लेके चलती है, लेकिन हाथी जब पकड़ने चलती है उसकी सूंड बड़ी है तो वह धूल को ले लेती है, तो धूल और शक्कर में कितना अंतर आ गया। और बड़े बड़े हाथियों को इन चींटियों से ही भय होता है, इसलिए फूंकते रहती हैं बराबर, कहीं हमारे ऊपर चढ़ न जाए। तो इतने बड़े जीव को मारने के लिए एक छोटी सी जो चींटी है वह